सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धमणन्तमणिन्दियं मणुवमपत्थसौखमणवज्रम् केवलपहोहनिचय दुर्नयतिमिरञ्जिनं नमः।
यह धवला शास्त्र श्री वीर सेन आचार्य ने रचा हुआ है। मूल ग्रंथ षटखंडागम जो भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य ने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार लिखा था, उसमें हम 20 पेज पर आए हैं। यहाँ हमको पदार्थ को जानना है, किसी चीज को जानना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बात यहाँ बता रहे कि प्रमाण नए और निक्षेपों के द्वारा उसका विचार करना चाहिए, पदार्थ का निर्णय करना चाहिए। यानी सही निर्णय कब हो, जब प्रमाण नए और निक्षेपों के द्वारा उस पदार्थ को जाना जाए, तो उसकी बात यहाँ चल रही है। तो निक्षेप 6 प्रकार के हमने देखे थे, उसमें पहले नाम निक्षेप है, किसी चीज का कुछ नाम रख देना इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स, उसके गुण हो या उसके जो कुछ क्वालिटी है या उसकी कुछ जाति है। हमने 4 निमित्तों से नाम पढ़ते ऐसा देखा था, जाति की अपेक्षा नाम हुए, जैसे ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये गाय है। दूसरी बात द्रव्य की अपेक्षा से देखे कि ये संयोगी द्रव्य की अपेक्षा से नाम है, ये क्या केले वाला फल देखा था नाम, चश्मे वाला, या उसके शरीर में ही ऐसा कुछ व्यंग हो जाए, लंगड़ा है, काना है, अंधा है, तो ये समवाय द्रव्य कहता है। गुण की अपेक्षा कोई काला है, लाल है, वो गुण की अपेक्षा उसका नाम पड़ता है। जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया, जैसे गायक, नर्तक, क्रिया करने वाला, उस क्रिया के यानी कोई कहेंगे ये प्रवचनकार है, प्रवचन करने की क्रिया करने वाला उसको प्रवचनकार कहेंगे, व्यापार करने वाले को व्यापारी कहेंगे। परंतु जो नाम निक्षेप है उसमें इन चारों की ही अपेक्षा नहीं है, इनके निमित्त बिना हम किसी चीज का कुछ नाम रखे उसको कहते हैं नाम निक्षेप। तो नाम निक्षेप की बात हमने कल देखी थी, अब अगले वाले जो निक्षेप है उसकी चर्चा अब यहाँ करेंगे हम। 20 पेज पर आए थे ना हम कल। सेकंड पैराग्राफ, उन नामादि मंगलों में से, नामादि यानी नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल, ये नामादि मंगल 6 देखेंगे हम। अभी हमारा दूसरा पॉइंट चल रहा है स्थापना मंगल वाला। उन नामादि मंगलों में से अब स्थापना मंगल को बतलाते हैं। किसी नाम को धारण करने वाले दूसरे पदार्थ की वह यह है इस प्रकार स्थापना करने को स्थापना कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे पत्थर की मूर्ति है और उसमें हमने ये महावीर भगवान है ऐसी स्थापना की। मंदिरों में जो हम अरिहंत भगवान की स्थापना करते हैं तो वह विशिष्ट तीर्थंकरों की मूर्ति है, उसमें हम स्थापना करते हैं। मूर्ति बनती है तो सबकी एक सरी की बनती है, तो फिर हम उसमें चिन्ह लांछित किए, नीचे उत्कीर्णित करते हैं विशिष्ट तीर्थंकरों का चिन्ह, और फिर वहाँ वे महावीर भगवान है, तो पंच कल्याणकों में वो महावीर भगवान के जो माता पिता है उनके नाम रखेंगे, फिर वो कौन से दिन वो गर्भ में आए, कौन से दिन जन्म हुआ, ये सब उसमें विधिपूर्वक स्थापना करेंगे हम, उसको कहते हैं स्थापना निक्षेप। तो उस विशिष्ट नाम धरने वाले पदार्थ में किसी अन्य वस्तु की स्थापना कर देना उसको कहेंगे स्थापना निक्षेप यही बताते, किसी नाम को धारण करने वाले दूसरे पदार्थ की वह यह है इस प्रकार स्थापना करने को स्थापना कहते हैं। वह स्थापना दो प्रकार की है, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना, यानी जैसा है वैसे में स्थापन करना या जो वैसा नहीं है उसमें स्थापन करना। उसका दूसरा नाम है तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना, यानी जैसा जिसका आकार है उसी आकार में उसको स्थापन करना, उसको कहेंगे तदाकार स्थापना। परंतु ऐसा आकार नहीं है फिर भी उसमें स्थापन करना, उसको कहते हैं अतदाकार स्थापना। जैसे मंदिरों में जो मूर्ति स्थापन करते हैं तो उसको उस मूर्ति में महावीर भगवान की हमने स्थापना की, तो जैसे मनुष्य का आकार है वैसी मूर्ति बनाई है तो वो तदाकार स्थापना हुई, उसी को सद्भाव स्थापना कहेंगे। और जो शतरंज की जो मोहरे हैं अलग अलग, तो उसमें ये राजा है, ये वजीर है, ये हाथी है, घोड़ा है, उसके आकार के तो है ही नहीं है फिर भी उसमें हमने उसको नाम रख दिया और उसके उसमें स्थापना कर दी, तो वो अतदाकार स्थापना होगी। या अपने में ऐसे भी स्थापना करने के प्रकार है ना, तंदुल रख दिया, लवंग रख दिए और उसमें वो भगवान की स्थापना करते हैं। अभी वो ठीक है गलत है उसकी चर्चा नहीं हम कर रहे हैं, और ये अतदाकार की स्थापना की बात है। क्या कहते हैं देखो इसको फिर पढ़ेंगे, तीसरी लाइन, ये स्थापना दो प्रकार की है, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। इन दोनों में से जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार को धारण करने वाली वस्तु में सद्भाव स्थापना समझना चाहिए। ये उसकी आकार धारण करने वाली वस्तु यानी पत्थर की मूर्ति हो, चित्र हो, या कोई वो सांचे में ढालकर बनाते हैं कोई वस्तु, तो उसी के आकार की अगर बने, माटी का खिलौना बनाया, गाय के आकार का बनाया, तो यह गाय है ऐसे हम उसमें कहते हैं, तो उसी के आकार का बनाया है तो उसको कहते हैं सद्भाव स्थापना। तथा जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार से रहित वस्तु में असद्भाव स्थापना जानना चाहिए। यह असद्भाव स्थापना, कोई भी आकार की अन्य चीज हो उसमें हमने बता दिया ये अमुक चीज है, पहले ऐसा होता था कि सुपारी, अभी कोई मियाँ बीबी पूजा में बैठते हैं, अभी वो बीबी कहीं चली गए तो वहाँ वो कुछ सुपारी रख देंगे, वो स्थापना कर दी उसकी, या लड़ाई पर चला गया है और शादी में, पहले ऐसा होता था सात भाई और सात वो कोई अन्य बहनें हैं उनकी शादी होने वाली है, तो छह भाई तो आए, सातवां भाई आया नहीं था तो उसकी तलवार रख दी। हमने सुना था ना बचपन में, किसमें, वो रविवार व्रत की कथा में। तो इसको क्या कहेंगे, अतदाकार स्थापना। पर उसको रामचंद्र मानकर नहीं, उसकी उसके चरण मानकर पूजा करता था कि रामचंद्र मानकर पूजा था, उनके चरण, हाँ उनके चरण मानकर ही पूजा करता था। हाँ मगर उसको राम करके नहीं बिठाया था, वहाँ राम के चरण कहकर, हाँ ऐसे चरण के आकार अभी हम स्थापन करते हैं, वो तो तदाकार हुए ना, चरण जैसे इम्प्रेशन होते ना, चरण के इम्प्रेशन, अभी जो कहीं शिखर जी के ऊपर जाओ टूंक पर तो वहाँ खाली चरण, फिर भी ये कौन से भगवान के चरण है ऐसे वहाँ हम वो स्थापना कर देते उसमें, या विशिष्ट मुनि के ये चरण है तो वहाँ तो पैर के निशान जैसे हो गए वैसे आकार वहाँ रखा हुआ होता है। और ये विशिष्ट तीर्थंकरों के या विशिष्ट महाराज के ये चरण है, मुनि के चरण है, ऐसा हम उसमें तदाकार स्थापना कर देते। अन्य मति क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा पत्थर ले लिया, उसको सिंदूर लगा लिया, ये हमारे अमुक भगवान है, उनके भगवान हो जाते हैं ना, अतदाकार स्थापना। अभी ये तदाकार की फिर दोबारा समझाएंगे नीचे, लेखनी से लिखकर अर्थात चित्र बनाकर, तदाकार कैसे कैसे होगा, या तो चित्र में हम उसी आकार का चित्र ड्रॉ करेंगे, अभी तो इसमें लिखा नहीं मगर फोटो भी आएगी उसमें, अभी चित्र बनाकर खनन अर्थात छैनी टांकी आदि से आदि के द्वारा, यानी जो शिल्प बनाते हैं पत्थर में उत्कीर्णित करते हैं ना वो टांकी के द्वारा। बंधन अर्थात चिनाई लेप आदि के द्वारा, जैसे चिकनी मिट्टी लेते हैं और उसका फिर बंधन ने उसके बनाते हैं ना चिकने, या हम आजकल वो प्लास्टिक का मिलता है नरम ऐसे कुछ होता है ना प्लास्टिसिन, तो उसके कुछ भी हम चाहे जो वस्तु बनाए उसमें से मिट्टी जैसे आता है वो बच्चों के लिए देते ना खेलने को, तो उसके उसको चिनाई कहते। तथा क्षेपण अर्थात साँचे आदि में ढलाई आदि के द्वारा मूर्ति बनाकर स्थापित किए गए, यानी अलग अलग पद्धति से उसका चित्र बनाए या उसका शिल्प बनाए या उसकी मिट्टी की वस्तु बनाए, या हम कह सकते कि वो रंगोली से भी बनाते कोई चित्र, तो इस अलग अलग प्रकार से। या साँचे में ढलाई, साँचे में ढलाई का अर्थ समझ में आता है, साँचा होता है मोल्ड, मोल्ड ऐसे मोल्ड होता है उसके अंदर वो दबाकर तैयार किया जाता है, बाहर में वो मोल्ड फिर जो मेटल का होता है बाहर का हिस्सा वो निकाल देते हैं, वो मोम के भी चीज़ें बनाते हैं या पीतल के भी ऐसे सांचे में डालकर चीज़ें बनाते हैं, उसको कहते हैं सांचा। इसके द्वारा मूर्ति बनाकर स्थापित किए गए, यानी उसके आकार पहले बनाया, फिर क्या किया, बुद्धि से अनेक प्रकार के मंगल रूप अर्थ के सूचक गुण समूहों की कल्पना की गई है। अब यहाँ हमको स्थापना मंगल समझाना है, तो विशिष्ट मूर्ति बनाई, फिर बुद्धि में ये अरिहंत भगवान है तो उनके गुण उसमें हमने बुद्धि कल्पना के द्वारा स्थापित किए कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य से युक्त है, क्योंकि जिन प्रतिमा जिन सारखी ऐसा लिखा है, जैसे साक्षात जिनेन्द्र भगवान है वैसी ही स्थापना, उनके सभी गुणों की स्थापना हमने मूर्ति में अपने बुद्धि में स्थापना की है। तो सूचक गुण समूह की कल्पना की गई, ऐसे मंगल पर्याय से परिणत जीव के रूप को अर्थात तदाकार आकृति को, यानी वो आकृति अभी हमारे बुद्धि में मंगल रूप परिणत हो गई है, ख्याल है? सद्भाव स्थापना मंगल कहते हैं। ये फोटो में भी, फोटो क्या है, वो तो ड्राइंग है ना, पिक्चर है वो, तो फिर भी उसमें हम हमारे कोई रिलेटिव की स्थापना कर देते ना, ये हमारे उनके जैसे है, तो उनको देखकर हमको वो गुणों की याद भी आती है, हमारे पिताजी का फोटो देखकर उनके गुण का स्मरण होता है, तो हम उनकी स्थापना उस फोटो में कर देते हैं, और वो फोटो को कोई अवी नहीं करेंगे तो हमें भी गुस्सा आता है ना, क्योंकि हमने उसमें स्थापना की हुई है, तो ये स्थापना निक्षेप कहलाता है। यह मंगल की चर्चा है तो ये स्थापना मंगल, यानी किसी अभी भगवान की मूर्ति है, अब हमने भगवान की फोटो भगवान का चित्र भगवान की जो कुछ है उसमें बनाकर उसमें उनके गुणों का वहाँ स्थापना कर देते कल्पना में अपने बुद्धि में, तो ये स्थापना मंगल हो गया। अब ये स्थापना मंगल में ही असद्भाव यानी अतदाकार की बात करेंगे, अभी हमने तदाकार की बात देखी थी। नमस्कार आदि करते हुए जीव के आकार से रहित अक्ष अर्थात शतरंज की गोटों में वराड़क अर्थात कौड़ियों में तथा इसी प्रकार अन्य अतदाकार वस्तुओं में मंगल पर्याय से परिणत जीव के गुण स्वरूप की बुद्धि से कल्पना करना असद्भाव स्थापना मंगल है। क्या कहना चाहते हैं कि हमको मंगल की स्थापना करनी है मूर्ति में या उसके अनुरूप जो वैसे आकार में स्थापना करना, वो तो तदाकार हुआ या सद्भाव हुआ, अब मूर्ति जैसा तो आकार नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, वो शतरंज की गोटों में जैसे हम स्थापना करते हैं या कौड़ी से खेलते हैं ना, आपने कभी बचपन में कभी खेला होगा, तो ऐसा ऐसा होता है तो उसका कितनी संख्या हम नापते हैं, उसको क्या कहते हैं, दान कितनी पड़ लो, यानी हाँ तो एक या दो या छः और या सभी उल्टी पड़ी तो 12 ऐसा कुछ है ना, उसमें हम निश्चित कर देते हैं संख्या, कैसे वो कौड़ी ऐसी होगी तो उसको 1 कहना, ऐसी होगी तो 0, ऐसा जो कुछ है तो ये हम उसमें निश्चित कर देते हैं कल्पना के द्वारा, उसमें हमने संख्या मान ली है, तो अतदाकार हुई वो संख्या की स्थापना। ऐसे किसी चीज में हम मंगलपने की कल्पना कर ले तो वो स्थापना मंगल होगा, परंतु कैसा स्थापना मंगल, असद्भाव अतदाकार। उसी का विशेषार्थ करते हैं। देखो, जैसे शतरंज आदि खेल में राजा मंत्री आदि की और खेलने की कौड़ी वो पासों में संख्या की आरोपना होती है। अभी समझा है ना मैंने, संख्या कैसे हम आरोपित करते हैं उसमें। उसी प्रकार मंगल पर्याय परिणत जीव और उसके गुणों की, मंगल पर्याय परिणत जीव हमने कौन कौन से देखे थे, जिनेंद्र भगवान और जिनयति, ऐसे हमने देखे थे। मंगल किस किस के आधार से होता है उसमें हमने 8 कॉम्बिनेशंस देखे थे, एक जीव अनेक जीव, एक अजीव अनेक अजीव, अजीव के जगह जिनेंद्र की मूर्ति लेना और जब जीव कहेंगे तो उस जिनेंद्र भगवान या मुनि लेना, यानी यति कहा है वहाँ। कल हमने 8 प्रकार देखे थे, उसके कॉम्बिनेशंस भी देखे थे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मंगल पर्याय परिणत जीव और उसके गुणों की बुद्धि के द्वारा की हुई स्थापना को असद भाव स्थापना मंगल कहते हैं। किसमें की स्थापना, मान लेते हैं हमने किसी सुपारी में की या लौंग में की या अक्षत में की, तो हमने वो जिनेंद्र भगवान की स्थापना की, क्योंकि मूर्ति नहीं है तो स्थापना की जगह हमने वहाँ वो लौंग रखकर ऐसे मान लिया कि जिनेंद्र भगवान है, तो उसको कहते हैं असद्भाव स्थापना मंगल। अब ये तीसरा पॉइंट द्रव्य मंगल, हमने देखा था नाम मंगल स्थापना मंगल, अब द्रव्य मंगल की बात करें। अब द्रव्य मंगल का कथन करते हैं, आगे होने वाली मंगल पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए द्रव्य को, यानी अभी कुछ काल में वो मंगल परिणत होने वाला है ऐसा द्रव्य लिया, कुछ काल के बाद उस पर्याय रूप परिणत होने वाला द्रव्य लिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेडिकल कॉलेज में हमने एडमिशन ली, 4 साल 4.5 साल के बाद डॉक्टर होने वाले हैं, तो मुझे तो याद है मैंने मेडिकल में अभी एडमिशन ली तभी से हमारे घर में जो कोई काम करने वाली थी एक बुढ़ी औरत, वो हमको डॉक्टर डॉक्टर पुकारती थी। अभी तो गए नहीं, कॉलेज स्टार्ट भी नहीं हुआ, तभी से क्या कहते हैं डॉक्टर। राजा का पुत्र है वो, अभी राजा नहीं हुआ, उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ, तभी से उसको हम राजा कहेंगे। सेठ के पुत्र को सेठ कह देते हैं, अभी तो वो कुछ कर नहीं रहा है, काम काज नहीं देख रहा है, फिर भी उसको सेठ कहते हैं। यानी अभी वो पूर्णता को नहीं पहुंचा है, फिर भी पहले से उसको कहने की पद्धति है। जैसे हम शिखर जी को निकले हैं, अभी तो लॉक कर रहे हैं और सीढ़ी उतर रहे हैं, अभी टैक्सी में भी नहीं बैठे, कहाँ जा रहे हो, शिखर जी जा रहे हैं, अभी तो यहाँ बम्बई तक भी नहीं पहुंचे ट्रेन तक, यहाँ अभी हम गए और घर में किसी ने पूछा कहाँ गए, शिखर जी गए, अरे अभी अभी तो साइन के रास्ते पर देखा था, तो अभी पहुंचना तो दूर है परंतु वो स्टार्ट किया है प्रोसेस। तो उस पर्याय रूप परिणत होने वाला द्रव्य वो भविष्य में पर्याय में परिणत होगा, परंतु उसको अभी से वैसा कहना यह है द्रव्य, द्रव्य निक्षेप कहते हैं उसको। देखो, आगे होने वाली मंगल पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए द्रव्य को उस पर्याय की अपेक्षा द्रव्य मंगल कहते हैं, यानी वो पर्याय भविष्य में होने वाली है परंतु हम अभी उसका निक्षेप किया ना, उसी द्रव्य तो वही है और उस पर्याय में परिणत होने वाला ही है, तो उस पर्याय की कल्पना हम अभी कर देते हैं और अभी उसको मंगल कहेंगे उस द्रव्य को। अथवा वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित द्रव्य को ही द्रव्य मंगल कहते हैं, और भूतकाल की भी हो सकते हैं, वर्तमान पर्याय वाला है उसको हमने अलग नाम दिया है, या भूत वाला पर्याय होगी या भविष्य की पर्याय, अतीत या अनागत पर्याय से युक्त द्रव्य को वर्तमान में ही उस रूप मान लेना। जैसे अभी पहले नरक का नारकी है जो पहले श्रेणिक राजा था, श्रेणिक राजा ही उसकी भूत की पर्याय थी, अभी भी वर्तमान में उसको श्रेणिक राजा पहले नरक में है कहते हैं, ये क्या है, ये द्रव्य निक्षेप है। या ऐसा कहना कि श्रेणिक राजा हमारे भावी प्रथम तीर्थंकर है कहना, होगे कहना कहा नहीं है, उनको है कहना, क्या श्रेणिक राजा हमारे भावी तीर्थंकर है कहते ना, तो है किस अपेक्षा, क्योंकि वो उस पर्याय से परिणत होने वाले है गारंटी से, उनको अभी से हमारे ये भावी तीर्थंकर है कहना, ये द्रव्य निक्षेप हुआ। हाँ, तो उसको जानने, ये तो हम निक्षेप देख रहे हैं, और वो नैगम नय है। अभी नैगम नय की चर्चा नहीं आई है, उसमें भी ऐसा है न एकम नय, एक को नहीं दोनों को पकड़ेगा। आगे होने वाली पर्याय को भी अभी पकड़ रहा है वो, हाँ, या भूत की पर्याय को अभी पकड़ रहा है। नैगम नय की चर्चा तो इसमें आएगी, तभी उसकी चर्चा छेड़ेंगे, अभी हम नहीं करेंगे डिस्कशन, क्योंकि सामने कुछ हो तो पढ़ने में मजा है ना, और आप समझने में भी तकलीफ नहीं होगी। क्या पूछा? हाँ देखो, विवक्षा से रहित, विवक्षा ने उसकी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से रहित, विवक्षा ने विवेचन, विवक्षा ने कथन से रहित, या उसको जानने से रहित, ऐसा देखो। वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित द्रव्य को ही द्रव्य मंगल कहते हैं। वह द्रव्य मंगल आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है। अब यहाँ की बात आई, ये आगम द्रव्य मंगल और नो आगम द्रव्य मंगल। द्रव्य मंगल किसको कहा हमने? जो वर्तमान पर्याय से परिणत नहीं है, भूतकाल में था या भविष्य काल में होगा, उसको हम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। द्रव्य मंगल की बात यहाँ चल रही है, तो अभी इसमें दो भेद करेंगे, आगम और नो आगम। आगम में जीव को लेंगे, उस मंगल संबंधित जो श्रुत ज्ञान है आगम है, आगम यानी अपना ही आगम द्रव्य परमागम, तो उसको जो जानने वाला जीव है उसको आगम कहेंगे। और नो आगम जो जानता नहीं ऐसे उस जीव का जो शरीर है उसको नो आगम में लेंगे। ये मेन डिफरेंस ख्याल में लेना। कोई भी जहां जहां द्रव्य निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप में दो बात करेंगे हमेशा, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। अब हम ये मंगल की चर्चा कर रहे हैं, तो आगम द्रव्य मंगल और नो आगम द्रव्य मंगल। तो आगम द्रव्य मंगल किसको कहना? कि मंगल संबंधी जो आगम की है ना, आगम में मंगल संबंधी जो विवेचन आया है, व्याख्यान आया है, उसका जिसने अभ्यास किया है ऐसा जीव लेना, वो आगम में लेना। और नो आगम में मंगल का अभ्यास जिसने किया है ऐसे जीव का शरीर लेना। फिर द्रव्य मंगल में दो भेद करना, आगम द्रव्य मंगल और नो आगम द्रव्य मंगल। आगम द्रव्य मंगल में किसको लेना है? कि जीव को। कौन सा जीव को? कि जिसने आगम से मंगल का अभ्यास किया है। अभी वर्तमान में उसका उपयोग से रहित है ऐसा मैंने लेना है उसमें। क्यों? क्योंकि द्रव्य निक्षेप में हम वर्तमान पर्याय से रहित द्रव्य को ले रहे हैं। आगम और नो आगम मैंने पहले उसकी परिभाषा क्या कही, कि आगम में से मंगल शास्त्र का जिसने अभ्यास किया है वो आगम द्रव्य मंगल, और नो आगम में उस जीव का शरीर को लेना नो आगम में। हाँ जी, और शरीर अभी तो मैं बेस से समझा रही हूँ, इसमें बहुत डिटेल्स है। पहले स्थूल रूप से जो मैंने विवेचन किया वो ख्याल में आया। आगम यानी जीव को लेना और नो आगम यानी शरीर को लेना। आगम में द्रव्य आगम को भी लेते हैं, उसकी बात जब करेंगे तब कहेंगे।
द्रव्य आगम यानी
शास्त्र, द्रव्य आगम यानी शास्त्र, और उस शास्त्र का अभ्यास करना जो जीव है उसको भी आगम कहा। जीव को भी आगम कहा जिसने आगम का अभ्यास किया है, और उस द्रव्य आगम यानी जो शास्त्र है पुस्तक है उसको भी आगम कहा। बराबर। अब हमारे द्रव्य निक्षेप का फॉर्मूला क्या था? द्रव्य निक्षेप का कि वर्तमान में उस पर्याय से रहित होना चाहिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, वर्तमान पर्याय की विवक्षा रहित द्रव्य को ही द्रव्य मंगल कहते हैं, यानी उसमें या भूतकाल की होगी पर्याय या भाविकाल की होगी। उस जीव ने भूतकाल में उसको वो उस रूप परिणत था या भविष्य काल में होगा, उसको ही हम द्रव्य मंगल कहेंगे। द्रव्य मंगल यानी आगम द्रव्य मंगल। अब इस यहाँ पढ़ेंगे तो ये चर्चा ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। आगम किसको कहना है? जीव को। कौन से जीव को? जिसने आगम में से मंगल संबंधी शास्त्र का अभ्यास किया है। और नौ आगम किसको कहना? उस जीव के शरीर को। उसमें एक बात ख्याल में लेना कि अभी जो वर्तमान में अभ्यास कर रहा है ऐसा जीव नहीं लेना, उसका उपयोग अभी उस शास्त्र संबंधी विचारों में नहीं है ऐसा जीव लेना। क्यों? क्योंकि द्रव्य निक्षेप का ही हमारा बेस क्या है, या तो वो भावी पर्याय से चाहिए या भूत पर्याय से युक्त चाहिए। चले अब इसकी परिभाषा इसमें पढ़ेंगे तो अधिक क्लियर हो जाएगा। देखो ये द्रव्य मंगल का कथन है ना, वहां से फिर पढ़ेंगे। अब द्रव्य मंगल का कथन करते हैं, आगे होने वाली मंगल पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए द्रव्य को द्रव्य मंगल कहते हैं, अथवा वर्तमान पर्याय की विवक्षा रहित द्रव्य को ही द्रव्य मंगल कहते हैं, भूतकाल की वाले भी उसको भी द्रव्य मंगल कहेंगे। वह द्रव्य मंगल आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है, यानी उसको कहेंगे आगम द्रव्य मंगल और नो आगम द्रव्य मंगल। ख्याल आया? आगम द्रव्य मंगल हम जीव को कहेंगे या शास्त्र को भी कहेंगे, और नो आगम द्रव्य मंगल किसको कहेंगे? उस जीव के शरीर को। हाँ, जिसने मंगल का अभ्यास किया है ऐसे जीव के शरीर को, या जो करने वाला है उसके शरीर को। वो बात आएगी अभी, उसकी एक एक सूक्ष्मता में जैसे आगे आगे बढ़ूंगी तैसे बताएंगे, क्योंकि सभी बातें अभी बताऊंगी बहुत कंफ्यूजन होगा। पहले में पहले द्रव्य मंगल किसको कहना? वर्तमान पर्याय की विवक्षा नहीं है, उसका अभी अपेक्षा नहीं है, या तो भूतकाल में वो जीव वैसा परिणत था या भविष्य में होने वाला है, उसको हम द्रव्य मंगल कहेंगे। द्रव्य मंगल के दो भेद, आगम द्रव्य मंगल और नो आगम द्रव्य मंगल। आगम द्रव्य मंगल यानी उस जीव ने उस आगम का अभ्यास किया है। कौन से आगम का? मंगल संबंधी जो शास्त्र, आगम में जो मंगल संबंधी प्ररूपणा है उसका जिसने अभ्यास किया है ऐसा जीव लेना आगम द्रव्य मंगल में, और नो आगम द्रव्य मंगल में उस जीव के शरीर को लेना, यानी उसके शरीर को भी हम नो आगम द्रव्य मंगल कहेंगे, उसको भी मंगल कहेंगे। अपेक्षा ये आई नो आगम द्रव्य मंगल। एक बात ख्याल में लेना है, यहाँ द्रव्य निक्षेप में वो जीव उसने अभ्यास किया है परंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है। आगम का अभ्यास है परंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है। जैसे हम धवला संबंधी अभी जान रहे हैं परंतु हम वर्तमान में उसके उपयोग में हैं, उसका उपयोग चल रहा है हमारा, ऐसा जीव नहीं लेना है। कैसा लेना है? कि जिसने मान ले गए भाव में या गए दो साल पहले उसका अभ्यास
नहीं
किया।
नहीं, अभी यहाँ जो सीख रहे हैं, अभी धवला का अभ्यास कर रहे हैं, इतने में उपयोग अपना धंधे में चला गया तो उसको कहेंगे
उपयोग रहित
द्रव्य मंगल, आगम द्रव्य मंगल
आगम
कहेंगे,
द्रव्य मंगल।
और उसके शरीर को नो आगम द्रव्य मंगल कहेंगे। यानी अभी क्या है कि इतनी डेफिनेट बात है कि वर्तमान पर्याय को यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, तो वर्तमान पर्याय में तो हम शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, लेकिन भले कर रहे हैं लेकिन अपना उपयोग अगर हट गया, कहीं दूसरे चला लग गया, तो फिर कहेंगे कि वो द्रव्य मंगल जो है, कौन सा? पहला वाला आगम द्रव्य मंगल। उस जीव को वो वर्तमान पर्याय में उस ज्ञान से यानी उपयोग से रहित होना चाहिए बस। आगे
यानी वो कुछ साल पहले, कुछ भव पहले भी हो सकता है, उसने गए भव में भी अभ्यास किया है या अगले भव में भी करेगा, ऐसा भी आगे उसके भेद प्रभेदों में आएगी ये बात। देखो द्रव्य मंगल है वो आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है। उसके नीचे आगम सिद्धांत और प्रवचन, ये शब्द एकार्थवाची है, तीनों ही उसके लिए नाम आते हैं। आगम कहो या सिद्धांत कहो या प्रवचन कहो, आगम से भिन्न पदार्थ को नो आगम कहते हैं। मंगल प्रावृत, प्रावृत है समयसार प्रावृत, प्रावृत कहो या पाहुड़ कहो, यानी वो ग्रंथ को प्रावृत कहने की पद्धति है। तो मंगल प्रावृत अर्थात मंगल विषय का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को जानने वाले, ये आगम की परिभाषा बता रहे हैं। आगम द्रव्य मंगल किसको कहना? कि मंगल प्रावृत यानी मंगल संबंधी जो शास्त्र में, आगम कौन सा शास्त्र? अपना जिनेन्द्र भगवान कथित जो शास्त्र है उसमें मंगल संबंधी जो कुछ कथन आता है उसका जिसने उस शास्त्र को जानने वाले, यानी उस शास्त्र को जो जानता है, जानता है ना, उसने पहले उसका अभ्यास किया है, उस संबंधी उसको ज्ञान है, किंतु कंडीशन क्या, वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को, अभी वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, उसका मंगल प्रावृत्त का उसने अभ्यास किया हुआ है परंतु अभी बैठा है व्यापार करने में, ऐसा जीव लेना वर्तमान में उस उपयोग से रहित है, ऐसे जीव को आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। अभी हमने समय सार का अभ्यास किया हुआ है तो समय सार की अपेक्षा हम क्या कहेंगे उसको, आगम द्रव्य समय सार, ख्याल है ना। अभी यहाँ मंगल, मंगल शास्त्र का अभ्यास किया था तो उसको आगम द्रव्य मंगल कहा, और समय सार शास्त्र का अभ्यास किया है तो हम क्या कहेंगे उसको, आगम द्रव्य समय सार कहेंगे, ख्याल है। धवला पूरा अभ्यास हो जाने के बाद कहना, 16 भाग होने के बाद हाँ उसके लिए आगम द्रव्य निक्षेप, निक्षेप संबंधी जाना उसको लगा लो फिर। देखो आगम किसको कहना, कि जिसने उस शास्त्र को जाना है, उस शास्त्र को जानने वाले परंतु वर्तमान में उसमें उपयोग से रहित ऐसा जो जीव है, उस जीव को आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। अभी हम मंगल की बात करेंगे, यहाँ अन्य अन्य शब्द उसमें डालेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, ख्याल है। आगम द्रव्य मंगल ख्याल में आया, अथवा अब अन्य भी किसी को आगम द्रव्य मंगल कहते हैं क्या, तो उसकी बात करें। मंगल विषय के प्रतिपादक शास्त्र की शब्द रचना को आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। शब्द रचना यानी जो मौखिक हम सुनाते हैं वो शब्द रचना कहलाते हैं। ये शब्द है ना, सुनाते जो है, एक आचार्य जैसे गंधर्वों ने रचना की, किसमें की, शब्दों में, यानी भाषा हुई ना, वो बोली गई, वो बोलकर सुना जाता है, सुनाया जाता है, उसको कहेंगे शब्द रचना, और जो लिखते हैं उसको कहेंगे अक्षर रचना। जो मुख से बोलते हैं वो शब्द रचना है, और वही अगर हम पुस्तक छपाई है तो ये अक्षर रचना हुए, तो ये भी द्रव्य मंगल कहेंगे इसको। हम बोलेंगे वो भी द्रव्य मंगल होगा, यानी आगम द्रव्य मंगल, और जो लिखा है ये हमारा आगम द्रव्य मंगल। देखो, अथवा मंगल के विषयक, विषय के प्रतिपादक शास्त्र की शब्द रचना को आगम द्रव्य मंगल कहते हैं, अथवा मंगल विषय को प्रतिपादन करने वाले यानी बताने वाले उस मंगल प्रावृत शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना को आत्मा ऐसा बोलते हैं या आत्मा ऐसा लिखते हैं। तो जो लिखा ना अ प्लस आ का ना आ हुआ, तो आत्मा ऐसा शब्द रचा वो तो अक्षर रूप हुआ, और जो बोला वो शब्द रूप हुआ, ध्वनि रूप हुआ, तो दोनों को ही आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। इसी का बात, इसी विशेषार्थ बताते हैं। आगे होने वाले पर्याय के सन्मुख अथवा वर्तमान पर्याय की विवक्षा से रहित, अर्थात भूत या भविष्यत पर्याय की विवक्षा से, विवक्षा है ना, अपेक्षा कहो या विवक्षा है, जब कोई कथन करते हैं तो उसके में वो कौन सी विवक्षा या कौन सी अपेक्षा है ऐसा जो कहते हैं, दृष्टिकोण। जैसे विवक्षित शब्द कैसा आया, पर्टिकुलर, तो यहाँ उसकी विवक्षा भूत की या भविष्य की, उससे द्रव्य को द्रव्य मंगल कहा है। क्या कहते हैं, हमने द्रव्य को द्रव्य मंगल कहा है परंतु वो द्रव्य अभी वर्तमान वाला पर्याय वाला नहीं लेना है, उस द्रव्य ने भूत में वो पर्याय धारण की थी या भविष्य में करेगा। जैसे नारकी को हम अभी भूत की पर्याय श्रेणी के राजा कहते हैं, या भविष्य के पहले तीर्थंकर होगी, तो उस अपेक्षा से उनको कहना ये होगा उनका द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप हुआ, ख्याल है ना। वैसे यहाँ द्रव्य तो लेना वही पर, या तो भूत की अपेक्षा या भविष्य की अपेक्षा, उसको द्रव्य मंगल कहा है। और तद विषय ज्ञान को आगम कहा है, ज्ञान को आगम कहा, वो ज्ञान कहाँ होगा, जीव में, और उपचार से शास्त्र में। इसलिए उस शास्त्र को जानने वाले जीव को ही मुख्यता से आगम द्रव्य मंगल कहा है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जो मंगल विषयक शास्त्र का जानकार वर्तमान में उसके उपयोग से रहित हो वह आगम द्रव्य मंगल है। यानी देखो क्या कहते हैं, मंगल विषय शास्त्र का जानना रहा इसलिए उसको आगम कहा, परंतु द्रव्य मंगल कहना है तो वो वर्तमान पर्याय उसमें उपयुक्त होगी तो हम उसको द्रव्य मंगल नहीं कह सकते, वो आगे भाव मंगल में चला जाएगा। ख्याल है ना, उसकी तो अभी नंबर आया तभी उसकी चर्चा करेंगे। शास्त्र का जाननार परंतु वर्तमान में उपयोग से रहित उस जीव को हम आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। ये बात ख्याल में आती है, ये नया विषय है इसलिए बार बार मैं दोहरा रही हूँ। फिर पढ़ते देखो, तात्पर्य निकलता है नीचे से दूसरी लाइन, जो मंगल विषय शास्त्र का जानकार वर्तमान उसके उपयोग से रहित हो वह आगम द्रव्य मंगल है, उस जीव को आगम द्रव्य मंगल कहा। यहाँ पर जो मंगल विषय शास्त्र की शब्द रचना अथवा मंगल शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना, यानी जो पुस्तक है, छपा हुआ पुस्तक है या लिखा हुआ पुस्तक है, उस रचना को आगम द्रव्य मंगल कहा है, वह उपचार से ही समझना चाहिए, उपचार है वो। ज्ञान कहाँ है, जीव में है।
देखो यहाँ पर यह बात बताई जाती है, शास्त्र में ज्ञान है क्या, दिव्य ध्वनि में ज्ञान है,
जीव
में ज्ञान है ना, तो शास्त्र में ज्ञान है ऐसा कहना यह उपचार है। अभी ख्याल में है? आपको ज्ञान होता है तो शास्त्र से ज्ञान होता है या किसी के उपदेश से ज्ञान होता है? स्वयं के कारण अपने में ज्ञान है, उस ज्ञान के कारण ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप हो रहा है, लेकिन किसी ने उपदेश दिया इसलिए उनके उपदेश से ज्ञान हुआ ऐसा कहना यह उपचार है, और किसी ने ज्ञान दिया इसलिए मुझे ज्ञान हुआ ऐसा मानना मिथ्यात्व है।
यानी आगम कहाँ पर है, हम कहते हैं ये हमारे आगम है, वो नहीं, वो उसको समझकर यहाँ ज्ञान हो जाएगा वो आगम है। ज्ञान को कहा यह मंगल, देखो ये, हाँ वो भाव, भाव में लेंगे वो भाव, आगम मंगल में चला जाएगा, उसकी बात आगे आएगी। अभी तो हम वर्तमान पर्याय से रहित वाला जीव ले रहे हैं, अभी इसी को समझो क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा आपका। क्रम से आप सुनोगे तो बराबर सभी इस बात सही समझ में आने वाली है। वर्तमान से परिणत जीव को क्या कहेंगे वो बात अन्य निक्षेप में आ जाएगी। हाँ उसको भाव आगम मंगल कहेंगे, ये आगम भाव मंगल कहेंगे, वो यही बात आगे आने वाली है। अभी हमारा द्रव्य निक्षेप चल रहा है, जब भाव निक्षेप में चले जाएंगे वहाँ वर्तमान पर्याय को लेना है। अभी हम द्रव्य निक्षेप में किसको लेना है, वो द्रव्य उस भविष्य में वो होगा या पूर्व में हो चुका है, वर्तमान में रहित है। ख्याल है ना, हम क्रम से जाएंगे ना तो ये कन्फ्यूजन टलेगा, क्योंकि इसमें और प्रभेद, इसके भेद और बढ़ने वाले हैं, उसके पेटा भेद और आएंगे, इसलिए हम स्लोली और उसको समझकर आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ द्रव्य मंगल की बात कर रहे हैं, जो द्रव्य निक्षेप जो है ना वो द्रव्य मंगल की, क्योंकि हम अभी मंगल की बात कर रहे हैं। द्रव्य मंगल दो प्रकार का है, द्रव्य मंगल का अर्थ क्या है, जो द्रव्य भूतकाल में या भविष्य काल में मंगल पर्याय रूप से परिणत है ऐसा द्रव्य लेना। तो अभी हम मंगल शास्त्र संबंधी जिसने अभ्यास किया है यानी उसको जानने वाला जीव है, परंतु वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, वो ज्ञान भूल गया ऐसी बात नहीं है, वर्तमान में उपयोग रूप ज्ञान में वो नहीं है, उपयोग उसका अन्यत्र, कोई नॉवेल पढ़ रहा है या टीवी देख रहा है, जो कुछ है अन्य चल रहा है उसका उपयोग, तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे, आगम द्रव्य मंगल कहेंगे, और उस जीव के शरीर को नो आगम द्रव्य मंगल कहेंगे। बराबर, उपचार से शास्त्र को भी या जो वाणी है गुरु की उसको भी, यानी मंगल को बताने वाली जो वाणी है उसको भी आगम द्रव्य मंगल कहने का उपचार है, व्यवहार है, उसको भी व्यवहार से कहते हैं। निश्चय से किसको कहते हैं, जीव को कहते हैं। ख्याल आया, निश्चय से आगम द्रव्य मंगल जीव है और उपचार से पुस्तक को, शास्त्र को भी आगम द्रव्य मंगल हम कहते हैं। हाँ देखो ये फिर पढ़ते हैं, शास्त्र की शब्द रचना अथवा मंगल शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना को, अक्षरों की रचना यानी अभी जो हमारे सामने पुस्तक है वो आगम द्रव्य मंगल कहा है, वह उपचार से ही समझना चाहिए, क्योंकि मंगल विषयक शास्त्र ज्ञान में मंगल विषयक शास्त्र की शब्द रचना और मंगल शास्त्र के अर्थ की स्थापना रूप अक्षरों की रचना ये मुख्य रूप से बाह्य निमित्त पड़ते हैं। क्या कहते हैं, हमको मंगल विषयक शास्त्र ज्ञान हुआ, उसमें बाह्य निमित्त कौन है, शास्त्र है, या वाणी रूप होगा या शब्द रूप रचना रूप, शब्द रचना यानी अक्षर रचना रूप होगा, इसको हम ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ या तो किसी ने सुनाया है या हमने पढ़ा है, वो बाह्य निमित्त है, इसलिए उस निमित्त को भी उपचार से हम आगम द्रव्य मंगल कहते हैं। ख्याल है, सच्चा आगम द्रव्य मंगल कौन है, वो ज्ञान है। वैसे तो सहकारी कारण शरीरादिक और भी होते हैं, अन्य भी कोई कोई सहकारी कारण यानी निमित्त कारण यानी उस समय होने वाले बाह्य निमित्त कारण जो कुछ है वो होते हैं, परंतु वे मुख्य बाह्य निमित्त न होने से, वो मुख्य नहीं है, मुख्य क्या है, ग्रंथ है या किसी का उपदेश है जो हम सुनते हैं, बाह्य निमित्त न होने से उनका ग्रहण नौ आगम में किया है यानी वो मुख्य नहीं है, मुख्य क्या है, ग्रंथ है या वाणी है। तो मूल कौन है, आगम द्रव्य मंगल, जीव का ज्ञान, मंगल शास्त्र का ज्ञान हुआ उसको, ऐसे जीव को, परंतु वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, ऐसे जीव को हमने आगम द्रव्य मंगल कहा। उस आगम द्रव्य मंगल यानी उस ज्ञान होने में मुख्य सहकारी कारण यानी मुख्य निमित्त कौन है, तो ग्रंथ है, तो उसको भी हमने आगम द्रव्य मंगल उपचार से कह दिया। वहां बाह्य निमित्त शरीर आदि भी है, मुख्य नहीं है फिर भी है ना, तो उसको भी, उसको क्या कह रहे हैं, नो आगम द्रव्य मंगल कह दिया। नो यानी जो आगम नहीं, वो नो आगम ऐसा लेना। अथवा मंगल विषयक शास्त्र ज्ञान से और दूसरे बाह्य निमित्तों की अपेक्षा इन दोनों बाह्य निमित्तों की विशेषता दिखाने के प्रयोजन से इन दोनों बाह्य निमित्तों का आगम द्रव्य मंगल में ग्रहण कर लिया है। ये तो जो बात बताई है वही उन्होंने दोहराई। हमने अभी तक कितने द्रव्य मंगल देखे, आगम द्रव्य मंगल और नो आगम द्रव्य मंगल। आगम द्रव्य मंगल किसको कहा, जिसने मंगल विषयक शास्त्र का अभ्यास किया है परंतु वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, वो आगम द्रव्य मंगल हुआ, बराबर। अब नो आगम द्रव्य मंगल को हमको समझना है, तो नो आगम द्रव्य मंगल हमने किसको कहा, उस जीव के शरीर को। कौन सा जीव, कि जिसने मंगल विषयक शास्त्र का अभ्यास किया है परंतु वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, ये बताना आवश्यक है क्योंकि द्रव्य निक्षेप की वही तो परिभाषा है। ऐसे जीव का शरीर लेना, तो ऐसे जीव का शरीर उसमें कौन की, तीन बातें, नो आगम द्रव्य मंगल तीन प्रकार का, यानी ये जो शरीर हम तीन प्रकार अलग अलग उसमें देखेंगे, कौन से, ज्ञायक शरीर, भव्य या भावी और तद व्यतिरिक्त, यानी अभी वर्तमान का शरीर, भावी भविष्य में धारण करेगा वो, या तद व्यतिरिक्त इन दोनों से जो अन्य कोई होगा वो। उनमें जो ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल है वो भी तीन प्रकार का समझना चाहिए, ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल। पहले हम वहां से शुरू करेंगे, नो आगम द्रव्य मंगल किसको कहा है, जो जीव मंगल विषयक शास्त्र को जानता है परंतु वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, ऐसे जीव का जो शरीर है उसको हम कहेंगे नो आगम द्रव्य मंगल। अब उसमें तीन भेद किए, एक ज्ञायक शरीर, एक भावी और एक तद व्यतिरिक्त। हम इसको पढ़ के फिर वो दोबारा वो पूरा टेबल देखेंगे, ख्याल है। अब उनमें जो न्यायिक शरीर नौ आगम द्रव्य मंगल है वह भी तीन प्रकार का समझना चाहिए। न्यायिक शरीर वाला कैसा है? मंगल विषयक शास्त्र का अथवा केवल ज्ञानादि रूप मंगल पर्याय का आधार होने से भावी शरीर, वर्तमान शरीर और अतीत शरीर, इस प्रकार न्यायिक शरीर नौ आगम द्रव्य मंगल के तीन भेद हो जाते हैं। जो ज्ञायक शरीर है उसमें ही वर्तमान, भूत और भावी ऐसे तीन लिए। वो भावी जो देखा था वो अलग है, अभी ये ज्ञायक के तीन भेद देख रहे हैं हम, ज्ञायक शरीर के ही तीन भेद देख रहे हैं। इसकी परिभाषा आएगी तो और क्लियर होगा। मूल में मूल हमने नौ आगम द्रव्य मंगल के तीन भेद किए, ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। अब भावी और तद्व्यतिरिक्त की बात बाद में करेंगे। अब ज्ञाय के फिर तीन डिविजन्स करना है। कौन से? हाँ, वर्तमान शरीर, अतीत शरीर और भावी शरीर, यानी भावी न्यायिक शरीर, वर्तमान यानी ऐसा लेना, ज्ञायिक शरीर है ना उसमें भूत, वर्तमान, भविष्य, ऐसे तीन लगाना। हाँ, ये पूरा वो ज्ञायक शरीर नौ आगम द्रव्य मंगल चल रहा है ना अपना, तो उसके नीचे अंदर वो भावी या अतीत या वर्तमान ऐसा लगा लेना, यानी ज्ञायक शरीर तीन भेद से। शंका पूछते हैं, आधारभूत शरीर में आधेयभूत आत्मा का उपचार करके धारण की हुई मंगल पर्याय से परिणत जीव के शरीर को क्या कहते हैं? आधारभूत शरीर। अभी हम जीव है और ये हमारा आधारभूत शरीर है, तो आधारभूत शरीर में आधे यानी जिसने आधार लिया वैसा कौन है? जीव है। तो आधारभूत शरीर में आधेयभूत आत्मा का उपचार करके धारण की हुई मंगल पर्याय से परिणत जीव के, यानी अभी मान लेते हैं मैं मंगल पर्याय से परिणत हूँ, तो इस शरीर को भी हम मंगल कहना, ये तो उपचार हो सकता है, है ना? क्या कहते हैं? जिस समय वो जीव मंगल पर्याय से परिणत हो गया है, अभी मुनि है, वो मुनि मंगल पर्याय से परिणत हुए हैं, तब उनके शरीर को मंगल कहने का उपचार तो अच्छा है, ठीक है। प्रश्नकार का प्रश्न अभी समझ लेते पहले। मंगल पर्याय से परिणत जीव के शरीर को नौ आगम न्यायिक शरीर द्रव्य मंगल कहना तो उचित भी है, यानी मुनि को वर्तमान में, मुनि को यानी उनके शरीर को, मंगल कौन है वहां? मुनिराज है, परंतु उनके शरीर को, क्योंकि वे स्वयं मंगल परिणत द्रव्य से, मंगल पर्याय से परिणत है, तो उनके शरीर को ज्ञायक शरीर नौ आगम द्रव्य मंगल कहना तो उचित है, ऐसा वो शंकाकार भी मान लेते हैं। परंतु भावी और भूत शरीर को मंगल संज्ञा देना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। वो मुनिराज पूर्व भव में, अभी हम तो देखते हैं कई निगोद से भी आते हैं कोई जी, और मुनिराज हो सकते हैं। हाँ, महिर स्वामी शेर थे और उसके पहले अन्य भी कई बिच्छू का पर्याय धारण की थी। हाँ, तो क्या कहते हैं? तो भूत शरीर को मंगल संज्ञा देना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, क्योंकि उनमें मंगल रूप पर्याय के अस्तित्व का अभाव है। क्योंकि जब वह शरीर था तब वह जीव मंगल रूप पर्याय नहीं परिणत था, ख्याल आता है ना? तो भूतकाल के शरीरों को क्यों कहते हैं आप, ऐसा प्रश्न है यार। ये उपचार है, कहना है, निक्षेप है, हमने उसमें डाला है क्योंकि वो जीव उस रूप परिणत हुआ है, ख्याल है ना? इसीलिए उसको नौ आगम कहा है, पुद्गल है वो, वहां है, बाह्य में निमित्त भूत है वो शरीर, उसमें अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इसको ये आंखों वगैरह को निमित्त रूप कहेंगे हम इसको, ख्याल है ना? उपचार किया हुआ वो है ही नहीं है। सच्चा मंगल तो वो जीव स्वयं है, वो ज्ञान है उसका कि उस रूप परिणत हुआ, ज्ञान ही वो सच्चा मंगल है। परंतु फिर भी आरोप किस किस पर आता है? यहाँ शरीर पर आरोप कर रहे हैं, इसलिए उस शरीर को ज्ञायक शरीर कहा। ज्ञायक यानी जानने वाला उस शरीर में है, इसलिए उस शरीर का नाम क्या लिखा? ज्ञायक शरीर। वर्तमान वाला जो है उसको ज्ञायक शरीर कहेंगे। उसका समाधान करते हैं, देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि राज पर्याय का आधार होने से अनागत और अतीत जीव में भी जिस प्रकार राजा रूप व्यवहार की उपलब्धि होती है, अभी ना वो अभी जो कोई राजा हुआ नहीं है, अभी बच्चा है, तो उसके भविष्य काल में वो राजा होने वाला है, राजा रूप पर्याय से परिणत होने वाला है, कब? भविष्य में। परंतु वो शरीर को अभी से हम राजा कहते हैं। या जो पूर्व में राजा हुआ था, अब वो राज्य छोड़कर मुनि भी हुआ, फिर भी उसको राजा कहना। या जैसे हम श्रेणी को कहते भी, वो श्रेणी के राजा कहते ना, भी नरक में है फिर भी वो श्रेणी का राजा बंदी गृह में था, उसी के लड़के ने उसके बंदीवास बनाया था, वो था तो कैदी बंदी, फिर भी उसको हम राजा कहते हैं ना, तभी तो वो राजा पद पर था नहीं, तो भूतकाल में वो राजा था। जैसे अंजर चोर की कथा आती है, पूर्व में चोर था, अभी तो वो मुनि पद धारण करके मोक्ष भी चला गया, फिर भी उसको अंजन चोर कहते हैं। तो ये क्या भूतकाल की पर्याय से परिणत है ना, वो भूतकाल में वो था, इसलिए क्या कहते हैं, राज पर्याय का आधार होने से अनागत यानी आने वाली भविष्यकालीन और अतीत यानी भूतकालीन जीव में भी जिस प्रकार राजा रूप व्यवहार की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार मंगल पर्याय से परिणत जीव का आधार होने से अतीत और अनागत शरीर में भी मंगल रूप व्यवहार हो सकता है। ये व्यवहार की बात चल रही, ये सब आरोप ही कर रहे हैं, हम सब निक्षेप कर रहे हैं, निक्षेप है ना, हम उसमें अपने बुद्धि से उसमें डाल रहे हैं विशेषार्थ, इसी का फिर दोहराते हैं अर्थ। आगम के बाह्य सहकारी कारण होने से शरीर को नो आगम कहा गया है, और उसमें अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि होने से उसे द्रव्य कहा गया है। अन्वय प्रत्यय ने वो कंटिन्यूएशन में है ना, वो जीव उसका आधार आदि संबंध उसमें लिया है, ये अन्वय प्रत्यय आगे फिर बताते हैं। ये दोनों बातें अतीत वर्तमान और अनागत इन तीनों शरीरों में घटित होती है, यानी वो जो ज्ञायक शरीर है वो अतीत शरीर, अनागत शरीर और वर्तमान शरीर तीनों में ये घटित होता है, इसलिए इनमें मंगलपने का व्यवहार हो सकता है। इसका खुलासा इस प्रकार है, अब खुलासा करें। औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर मंगल विषय शास्त्र के परिज्ञान में बाह्य सहकारी कारण है, ये तेजस कारमान को नहीं लिया है, औदारिक वैक्रियक आहारक को लिया, क्योंकि इनके बिना कोई शास्त्र का अभ्यास ही नहीं कर सकता है। बराबर। अब इनमें अन्वय प्रत्यय कैसे पाया जाता है, इसका खुलासा करते हैं। अन्वय प्रत्यय ने वो कंटिन्यूटी जिसको हम कहते हैं, वही का वही, वही का वही। जिस शरीर से मैंने मंगल शास्त्र का अभ्यास किया था, वही शरीर उक्त अभ्यास को पूरा करते समय भी विद्यमान है। इस प्रकार तो वर्तमान ज्ञायक शरीर में अन्वय प्रत्यय पाया जाता है, यानी अभी वर्तमान में इसी मनुष्य भव ने शास्त्र का अभ्यास किया और वही पूरा किया है, तो ये वर्तमान का हुआ ना ज्ञायक शरीर। मंगल शास्त्र ज्ञान से उपयुक्त मेरा जो शरीर था, तद विषय शास्त्र ज्ञान से रहित मेरे अब भी वही शरीर विद्यमान है। क्या कहते हैं, कुछ काल पहले मैंने मंगल शास्त्र का अभ्यास किया है, अब उस शास्त्र ज्ञान से रहित मेरा अभी जो वर्तमान में शरीर है, बचपन में अभ्यास किया, अभी वो शास्त्र ज्ञान चला गया, भूल गए, शोपशम ज्ञान है ना, उसका क्या ठिकाना, तो शरीर तो वही का वही है। इस प्रकार अतीत ज्ञायक शरीर में अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि होती है, उसको अतीत प्रत्यय, अतीत वाला का, और मंगल शास्त्र ज्ञान के उपयोग से रहित मेरा जो शरीर है, वही तद विषयक तत्व ज्ञान की उपयोग दशा में भी होगा, यानी मैंने मंगल शास्त्र का अभ्यास किया है, वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है, परंतु जब कभी उसके संबंध में सोचूंगी मैं, तो यही शरीर है तब भी। इस प्रकार अनागत न्याय शरीर में अन्वय प्रत्यय की उपलब्धि बन जाती है। इसलिए वर्तमान शरीर की तरह अतीत और अनागत शरीर में भी मंगल रूप व्यवहार हो सकता है। ख्याल में आई बातें? हाँ, क्योंकि तेजस कर्मण विग्रह गति में है, क्या वहां हम शास्त्र का अभ्यास कर सकते हैं? वो जीव के साथ है ना, उसकी बात नहीं है। जीव के साथ है उसकी बात नहीं, ये नो आगम क्यों कहा? शास्त्र का ज्ञान होने में बाह्य सहकारी कारण कौन है, उसको नो आगम कहा है। वो जीव के साथ पढ़ा है इसलिए नो आगम नहीं कहा उसको। अभी बाह्य सहकारी कारण हो रहे हैं ना, जैसे मैंने आंखों की बात की, कानों की बात की, अब मन है, अब उस संबंधी जानना सुनना पढ़ना विचार करना, ये बातों में ये निमित्त है ना ये सब, इसलिए उसको ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य मंगल कहते हैं।
यहाँ तो उसी शरीर की बात है जिस शरीर के माध्यम से यह जीव शास्त्राभ्यास कर सके। तेजस शरीर और कारमान शरीर है, लेकिन हम जब विग्रह गति में होंगे तब शास्त्राभ्यास होगा क्या? इसलिए उसको नहीं कहेंगे।
देखो, भूतकालीन शरीर यानी पहले भव की बात है, तो वो किस तरह से वो, उसको भी क्यों कहा? क्योंकि जीव तो वही का वही है ना, इसलिए उसके पूर्व के और भविष्य के शरीरों को भी यहाँ लिया है। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? द्रव्य मंगल से। मुख्य दो भेद, आगम द्रव्य मंगल और नो आगम द्रव्य मंगल। आगम द्रव्य मंगल, अभी हम जीव की बात करेंगे, शास्त्र को कहते उपचार से उसको भी हम बाजू रखेंगे। तो आगम द्रव्य मंगल किसको कहना? जीव को कहना। कौन सा जीव? कि जिसने मंगल शास्त्र विषय ज्ञान कर लिया, उसको जानने वाला जीव है। परंतु कंडीशन क्या है? वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं रहना चाहिए, यह कंडीशन है। तो उसको क्या कहेंगे हम? आगम द्रव्य मंगल। तो आगम द्रव्य मंगल के तीन भेद किए, ज्ञायक शरीर, नहीं नो आगम के हो गए। आगम द्रव्य मंगल तो हमने समझ लिया, अब नो आगम द्रव्य मंगल की बात करें। नो आगम द्रव्य मंगल में तीन बातें, एक ज्ञायक शरीर, एक भावी और एक तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर के भी तीन भेद किए, एक भूत, एक भावी और एक वर्तमान। अभी भूत के भी और तीन भेद करेंगे। भूत शरीर यानी पूर्व का शरीर, पूर्व का शरीर यानी पूर्व भव में किस तरह से उसने वो शरीर छोड़ा था, उसकी चर्चा करेंगे। पहले यानी पहला शरीर यानी क्या? मरण करके आया है, बराबर। तो कैसे मरा था? क्या समाधि मरण लेके मरा था, क्या कदलीघात से मरा था, क्या ऐसे आयु खत्म हो गई मर गया? इस तरह से उसके तीन भेद करेंगे। कौन से ये किसके भेद चल रहे हैं? भूत ज्ञायक शरीर के। हाँ, नहीं नहीं ऐसा पूर्वी ची पर्याय, अभी कहाँ से मरकर आए हम उसको लेंगे। चार चाहिए आपको? हाँ, अभी एक को पढ़ेंगे, फिर कल इसको चार से फिर ले लेना पड़ेगा, पूरा ही चार बनाएंगे। चार बनाएंगे कोई? हाँ, देखो इनमें से देखो, ये इसमें, इनमें से अतीत शरीर के तीन भेद है, च्युत, चावित और त्यक्त। च्युत, ये जो च्युत होना यानी क्या? गिर जाना, नष्ट हो जाना। चावित यानी कोई कराता है तो उसको चावित, हम देखे कृतकारित ऐसा कहते ना, हम स्वयं करते तो कृत, कारित यानी दूसरे से करवाते वो कारित। वैसे च्युत जो स्वयं छूट गया, चावित यानी जिसको छोड़ा गया, और त्यक्त बुद्धिपूर्वक उसमें त्याग किया उसका। अभी उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ख्याल में आएगा इसको क्या कहना चाहते हैं। कदलीघात मरण के बिना, कदलीघात किसको कहते हैं? जिसको अकाल मरण कहते हैं या कदलीघात कहते हैं। क्या होता है? किसी जीव ने बहुत लंबी आयु बांधी है, मान लेते 100 साल की आयु बांध कर आया, पूर्व भव ने उसने मनुष्य की 100 साल की आयु बांधी है, अभी वो वर्तमान में मनुष्य है, 25 साल का जवान लड़का है, तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसकी थी तो आयु उसने बांधी हुई 100 साल की, परंतु उसमें कदली घात होगा, आयु के परमाणु एक साथ एक छोटे अंतर्मूर्त में खिर गए, तो कदली घात कहते उसको। तो कदली घात के से क्या, जैसे मटका है उसमें से ड्रॉप ड्रॉप निकलता है, तो 24 घंटे लगते हैं मान लेते हैं पूरा पानी निकल जाने में, और किसी बच्चे ने आकर उसको फोड़ दिया तो क्या होगा, सभी पानी एकदम निकल जाएगा, है ना। वैसे आयु के सभी परमाणु खिर जाते हैं और वो मरण को प्राप्त होता है, तो उसको कहते हैं कदली घात मरण। तो यहाँ जो पहला है चुत में, उसमें कदली घात मरण की अपेक्षा नहीं लेना है, वो कदली घात वाला मरण अन्य वो चावित वाले में चले जाएगा। तो चुत में किसको लेना, तो कदली घात मरण के बिना पके हुए फल के समान, यानी पेड़ पर कोई फल है तो पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है, और कभी कभी क्या होता है बच्चे आकर वो तोड़ देते हैं, है ना। तो पके हुए फल के समान कर्म के उदय से झड़ने वाले आयु कर्म के क्षय से अपने आप पतित शरीर को च्युत शरीर कहते हैं, जो अपने आप गिर गया, गिर गया यानी निकल गया, यानी मरण को प्राप्त हुआ। क्या हुआ उसका, आयु कर्म का उदय चल रहा था तब तक वो शरीर बना रहा था, आयु का अंत निषेक खिर गया, उसकी वो आयु पूरी हो गई और उसने वो शरीर छुट गया, तो उसको कहते च्युत। वहाँ कदली घात की अपेक्षा नहीं है। विशेषार्थ, जैसे पका हुआ फल अपना समय पूरा हो जाने के कारण वृक्ष में से स्वयं गिर पड़ता है, वृक्ष से अलग होने के लिए उसे और दूसरे बाह्य निमित्तों की अपेक्षा नहीं पड़ती है, अन्य कोई निमित्तों की वहाँ जरूरत नहीं है, वो अपने आप वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार आयु कर्म के पूरे हो जाने पर जो शरीर शस्त्रादि के बिना छूट जाता है, शस्त्रादि यानी शस्त्र से हरण है या विषभक्षण है, रक्तस्राव है, अलग अलग हम कदली घात के जो कारण हमने देखे थे ना पहले, उसे च्युत शरीर कहते हैं। ये पहला प्रकार हुआ। अभी दूसरा है चावित। तो चावित में वो कदली घात वाला लेना। तो कदली घात के द्वारा छिन्न आयु के क्षय हो जाने से, आयु तो बहुत बंधी थी परंतु अभी वो बीच में ही छिन्न हो गई, छूटे हुए शरीर को चावित शरीर कहते हैं। कहाँ भी है, ऊपर गाथा है ना, विसवेयन रत्त खय भय सत्त गहन संकिले से ही आहार उसासाणम निरोह दो इज्जते आओ। इसका अर्थ करते हैं विष खा लेने से, वेदना से यानी अति तीव्र वेदना के कारण रक्त का क्षय हो जाने से, यानी हिमरेज कहो या अन्य कोई खून बह जाने से, तीव्र भय से, शस्त्राघात से और संक्लेश की अधिकता से, अधिक संक्लेश परिणाम के कारण तथा आहार और श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से, यानी स्टार्वेशन या ये बंद होता है ना, श्वास बंद हो जाता है किसी कारण से, आयु क्षीण हो जाती है, ना वो समाप्त हो जाती है। ये गाथा इसमें भी आई है ना गोमटसार में, कदली घात वाला प्रकरण हमने लेशा में देखा था, उसमें ये गाथा थी, नीचे लिखा होगा, हाँ ये गोमट कर्मकांड में है 57 वाली गाथा। विशेषार्थ, जैसे कदली यानी केला के वृक्ष का तलवार आदि के प्रहार से एकदम विनाश हो जाता है, अन्य वृक्ष है तो तोड़ देने से फिर बढ़ते हैं उसमें, तो ये कदली यानी केले के वृक्ष उसका नाश करने पर, तलवार से कट जाने पर वो पूरा ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार विषभक्षण आदि निमित्तों से भी जीव की आयु एकदम उदीर्ण होकर छिन्न हो जाती है। ये कौन से जीवों की बात है, याद है, हाँ हाँ, चार गति में से कौन से वाले जीव लेना यहाँ, हाँ कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच, क्योंकि जो असंख्यात वर्षों के जो भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच है और देव है और नारकी है, उनमें कदली घात से मरण नहीं होता, और दूसरा एक पॉइंट हमने देखा था, जिसकी ऑलरेडी आयु बंधी हुई है, हमने देखा ना त्रिभाग में बनती है, कोई 81 इयर्स का आदमी है उसने 54 साल में आयु का बंध किया, अब उसके बाद उसका कदलीघात से मरण नहीं होगा, क्योंकि अगले आयु का आबाधा उसका निश्चित हो गया है, अभी उस आबाधा काल में कटौती नहीं होगी। हाँ, क्योंकि उसने बांधी आयु, बांधिया ने उसके रिमेनिंग 27 इयर्स उसके आगामी आयु की वो उसका आबाधा काल हो गया, अब उसका कदलीघात से मरण नहीं हो सकता। जिसने आयु का बांध नहीं किया है, नहीं आयु बंध अलग, आयु कर्म अलग है, और जो गति है वो नाम कर्म का एक भेद है। नहीं, गति नाम कर्म हर समय बनता है, और वो भी अलग अलग गति का बनता है, छूट नहीं, बनता ही रहता है, हर समय बनता रहता है, आठवें गुणस्थान तक हर समय वो गति का बंध होता ही रहेगा। चरम शरीरी को आयु का बंध नहीं है, हाँ, और कदलीघात होने से प्रश्न ही नहीं, उसको तो मरण ही नहीं है। चरम शरीरी वाले को भी कदलीघात नहीं होता है, क्योंकि उसको मरण नहीं है ना, वो तो निर्वाण होने वाला है उसका। चरम शरीरी ने उसी भव में मोक्ष जाने वाले के, तो इसको कहते हैं चावित, इसका अकाल मरण भी कहते हैं इसको, इसका नाम है चावित शरीर। पहले वाला कौन सा देखा था, च्युत, यानी वहां आयु समाप्त हो गई और शरीर छूट गया, और ये वाला चावित, कदलीघात हुआ और मरण को प्राप्त हुआ। अब त्यक्त शरीर है, त्यक्त ने उस जीव ने छोड़ा उसको, यहाँ तो शरीर ने जीव को छोड़ा था, अब जीव ने शरीर को छोड़ा है ना। हाँ, समाधि मरण, देखो त्यक्त भी तीन प्रकार का है, अब समाधि के भी अलग अलग जो कोई प्रकार है समाधि मरण के, जिसको संलेखना के प्रकार अलग अलग कहते हैं, तो उस संतारो ग्रहण करें, वो संतारा भी सब वो प्रायपगन वाले नहीं करेंगे। देखो ये तीन प्रकार के हैं, कौन से, एक प्रायोपगमन विधान से छोड़ा हुआ, छोड़ा गया, दूसरा है इंगिनी विधान से छोड़ा गया, और तीसरा है भक्त प्रत्याख्यान विधान से छोड़ा गया, यानी तीनों ही ये संन्यास मरण या संलेखना जिसको कहते हैं वो है, उसका डिस्क्रिप्शन आगे आ रहा है। तीन कौन से, प्रायोपगमन विधि से, इंगिनी मरण से, या भक्त प्रत्याख्यान से। उसमें भी तीन भेद है ना, किसी को पता चला कि अभी थोड़ी आयु है, बहुत कोई बड़ी बीमारी है, तो अंतर्मूर्त का भी हो सकता है वो संतार, या किसी को अभी कोई ऐसा रोग है तो दो चार महीने का भी होगा, या वो भक्त प्रत्याख्यान में तो 12 साल का होता है मैक्सिमम, वो क्रम से उसके आहार वगैरह की विधि कटौती होते होते वो 12 साल तक चलता है, मगर ऐसे अच्छी धट्टी कट्टी ऐसी आयु है युवा अवस्था और संतार वाली ऐसी बात नहीं है, वो तो आत्महत्या हो जाएगी। ऐसे कोई बहुत वृद्धावस्था हो जाती है, कोई शरीर में ऐसा रोग दिखाई देता है कि अभी आयु बहुत कम, या पहले तो निमित्त ज्ञानी भी होते थे, उनको पता चलता था अभी 6 महीने की आयु बाकी है, अभी महीने की आयु बाकी है, तो वो ले लेते थे। हाँ, अवधि ज्ञानी भी जानते हैं, और ऐसे मुनियों के वो कैसा जानना, उसके भी अलग अलग विधि विधान है, उसके भी अपनी आयु कितनी शेष रहेगी उसके जानने के लिए ऐसी कोई पद्धतियाँ है, शास्त्रों में आता है उसका वर्णन, तो उसमें पता चलता था कि अपने कितनी है। और इतने जो मुनि अवस्था में है, ज्ञान की विशिष्ट क्षोभ उनका बढ़ जाता है, तो ऐसी बातें उनको पहले पता भी चल जाती है किसी को, या अन्य मुनि भी उनको अवधि ज्ञानी होगे तो वो भी बताएंगे कि तू अभी तेरी इतनी आयु बाकी है। तो ये त्यक्त शरीर तीन प्रकार का, प्रायोपगमन विधि से, इंगिनी मरण, या भक्त प्रत्याख्यान। जरा हम कहाँ से शुरू किया था उसको देखेंगे, द्रव्य मंगल से शुरू किया था, आगम द्रव्य मंगल जीव को कहा और नो आगम द्रव्य मंगल शरीर को कहा। अब नो आगम द्रव्य मंगल में ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त, ज्ञायक शरीर में भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य का। जो भूतकाल का है तो भूतकाल में च्युत, चावित और त्यक्त, अवत्यक्त में तीन वेद, प्रायोपगमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान, ख्याल है ना? ये पूरा टेबल कल दोहराएंगे हम, तो अभी ये इसका विशेषार्थ करते हैं। देखो तीन भेद हो जाते हैं, अपने और पर के उपकार की अपेक्षा रहित समाधि मरण को प्रायोपगमन कहते हैं। यानी कोई मुनि ऐसे है ना, स्वयं स्वयं का वो संसार करना वगैरह वगैरह कुछ नहीं करते, चलना फिरना या सोना या कुछ है कुछ नहीं, सब छोड़ देते हैं, और ना दूसरे से ही वैयावृत्य कराते हैं, उसको कहते हैं प्रायोपगमन। देखो प्रायोपगमन समाधि मरण को धारण करने वाला साधु संस्तर का ग्रहण करना, बाधा के निवारण के लिए हाथ पांव का हिलाना, एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना आदि क्रियाएं न तो स्वयं करता है न दूसरे से कराता है। कुछ नहीं, प्रायोपगमन किया तो बस महीने भर का होगा या जो कुछ है वो अंगीकार किया तो बस आखिर तक वो चलेंगे, कहीं जाना आना आहार ग्रहण करना वगैरह कुछ नहीं। बस संस्तर यानी वो तो बिछाते ना तृण का वगैरह सोने के लिए अच्छी जगह, वो संस्तर ग्रहण करना कहते हैं, संलेखना ग्रहण करने। जैसे काष्ठ सर्वथा निश्चल रहता है उसी प्रकार वह साधु समाधि में सर्वथा निश्चल रहता है। ये बाहुबली ने प्रायोपगमन धारण कर दिया था, वहां से हिले नहीं ना, और उसी अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त किया, ये प्रायोपगमन के।
अभी यहाँ पर जो बात आई है कि बाधा के निवारण के लिए हाथ पांव का हिलाना, यानी मान लीजिए अभी वो उन्होंने वो संलेखना ली है प्रायोपगमन की, और ऐसे बैठे हैं या सोए हुए मान लो, और मक्खी आके बैठे तो उसको उड़ाने का भी नहीं, काष्ठ के जैसा निश्चल बताया, काष्ठ यानी लकड़ी, सूखी लकड़ी जैसी बिल्कुल निश्चल रहती है। इसी तरह एक एक बातों को देखेंगे तो बहुत टाइम जावे,
यानी वो आहार विहार वगैरह सभी क्रियाएं बंद करके बस प्रायोपगमन विधि ले ली उन्होंने, तो उनका आखिर का जब। शास्त्रों में प्रायोपगमन के अनेक प्रकार के अर्थ मिलते हैं, जैसे संघ को छोड़कर अपने पैरों द्वारा किसी योग्य देश का आश्रय करके जो समाधि मरण किया जाता है उसे पादोपगमन समाधि मरण कहते हैं। पाद यानी पैर, तो स्वयं चलकर कहीं जाना उसको पादोपगमन, यह अलग अलग अर्थ से अलग अलग उसका वर्णन आता है। अथवा प्राय अर्थात संन्यास की तरह उपवास के द्वारा जो समय समाधि मरण होता है उसे प्रायोपगमन समाधि मरण कहते हैं। अथवा पादप, पादप यानी वृक्ष, पादप अर्थात वृक्ष की तरह निष्पंद रूप से रहकर शरीर से किसी भी प्रकार की क्रिया न करते हुए जो समाधि मरण होता है उसे पादपोपगमन समाधि मरण कहते हैं। ऐसे तीन अलग अलग वर्णन शास्त्र में आता है। इन सब अर्थों का मुख्य अभिप्राय यही है कि इस विधान में अपने व पर के उपकार की अपेक्षा नहीं रहती है, ना स्वयं स्वयं का कुछ करते हैं, आहार के लिए गमन करना या मलमूत्र के लिए विसर्जन करने के लिए जाने कुछ भी, बस प्रायोपगमन विधि जैसा काष्ठ निश्चल है वैसे निश्चल रहते हैं, खड़े है या पद्मासन में बैठे है, और उसी अवस्था में वो मोक्ष नहीं होगा क्योंकि ये पूर्व की शरीर की बात चल रही है ना, तो हो सकता है वो मुनि देव में जाएंगे तब उनके ये पूर्व का शरीर हो जाएगा। ये अब ये दूसरा इंगिनी मरण, जिस सन्यास में अपने द्वारा किए गए उपकार की अपेक्षा रहती है किंतु दूसरे के द्वारा किए गए वैयावृत्ति आदि उपकार की अपेक्षा सर्वथा नहीं रहती, उसे इंगिनी समाधि कहते हैं। यानी स्वयं ही स्वयं का वो जो संसार वगैरह है, जो कहाँ बैठना है उठना है आदि बातें तो चलेगी, तो उसको इंगिनी मरण कहेंगे। उसका विशेषार्थ बताते हैं। इंगिनी शब्द का अर्थ इंगित है यानी अभिप्राय है। हम कहते हैं इसके मन में क्या, इसका इंगित क्या है यानी इसका अभिप्राय क्या है, इससे यह तात्पर्य निकलता है कि समाधि मरण को करने वाला स्वतः किए हुए उपकार की अपेक्षा रखता है। इस समाधि मरण में साधु संघ से निकलकर किसी योग्य देश में समभूमि अथवा शिलापट्ट देखकर उसके ऊपर स्वयं तृण का संस्तर तैयार करके समाधि की प्रतिज्ञा करता है। इसमें उठना बैठना सोना, हाथ पैर का पसारना, मलमूत्र का विसर्जन करना आदि क्रियाएं क्षपक स्वयं करता है। क्षपक यानी जो मुनिराज समाधि मरण धारण करते हैं उनको कहते हैं क्षपक। किसी दूसरे साधु की सहायता नहीं लेते हैं। इस तरह यावत जीवन यानी मरण तक चार प्रकार के आहार के त्याग के साथ स्वयं किए गए उपचार सहित समाधि मरण को इंगिनी संन्यास कहते हैं। वहां भी आमरण था यानी यावत जीवन था प्रायोपगमन में, परंतु वहां तो कुछ भी नहीं, यानी बस धारण किया तो निश्चल हो गए, कहीं जाना आना सोना बैठना उठना ऐसा कुछ नहीं था, मलमूत्र विसर्जन करना कुछ नहीं था। अब यहाँ तो ये तो है स्वयं स्वयं का कर रहे, किसी दूसरे की मदद नहीं ले रहे, तो उसको कहते हैं इंगिनी संन्यास। अब भक्त प्रत्याख्यान किसको कहते हैं कि जिस संन्यास में अपने और दूसरे के द्वारा किए गए उपकार की अपेक्षा रहती है उसे भक्त प्रत्याख्यान संन्यास कहते हैं। जो हम आमतौर पर अभी भी चल रहे हैं ना, कोई किसी ने संलेखना ली तो अन्य मुनि है तो वो उनकी वैयावृत्ति करते हैं, उनको उपदेश देते हैं, उनका जो कोई मदद रूप बातें हैं वो करते हैं, तो उसको कहेंगे भक्त प्रत्याख्यान। उसका विशेषार्थ भक्त नाम भोजन का है। ये भक्त शब्द हमने पहले सुना था, कहाँ आया था? विकथा में। हाँ, भक्त कथा, भोजन कथा के लिए। भक्त नाम भोजन का है। ये भक्त है ने वो भगवान का भक्त, वो भक्त नहीं है, ये भोजन का भक्त वाला भक्त है। भक्त नाम भोजन का है और प्रत्याख्यान त्याग को कहते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि जिस संन्यास में क्रम क्रम से आहार आदि का त्याग करते हुए अपने और पराये उपकार की अपेक्षा रखकर समाधि मरण किया जाता है उसे भक्त प्रत्याख्यान संन्यास कहते हैं। इन तीनों प्रकार के समाधि मरणों में से भक्त प्रत्याख्यान विधि जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार की है। कितने काल तक लिए उन्होंने उसके अपेक्षा से? छोटा काल है, मीडियम है या एकदम बड़ा है, 12 साल का है, उसके अपेक्षा से तीन भेद है। जघन्य भक्त प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण अंतर्मुहूर्त मात्र है, उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण 12 वर्ष है और मध्यम भक्त प्रत्याख्यान विधि का प्रमाण जघन्य अंतर्मुहूर्त से लेकर 12 वर्ष के भीतर है। शंका। संयम के विनाश के भय से अगले पेज 26 श्वासोश्वास का निरोध करके मरे हुए साधु के शरीर का त्यक्त के तीन भेदों में से किस भेद में अंतर्भाव हो जाता है? क्या क्या? कि अपना संयम कहीं छूट न जाए, कोई उपसर्ग आया हो, भयंकर उपसर्ग आया हो या कोई ऐसा भयानक रोग हो तो कोई अपना श्वास का निरोध करके मरेगा ऐसा साधु, तो प्रश्नकार ने क्या पूछा? तो ये त्यक्त के तीन भेद में से किस में उसका आएगा? हाँ, तो उसका समाधान, ऐसे शरीर का त्यक्त के किसी भी भेद में अंतर्भाव नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार से मृत शरीर को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता। ख्याल है ना, ये तो आत्महत्या हो गई, इसके उस शरीर को मंगलपना नहीं कहेंगे। क्या ये फिर पढ़ना, ऐसे शरीर का, क्यों? उस साधु को क्या हुआ, अरे मेरा संयम छूट तो नहीं जाएगा ना, तो उसने श्वास का निरोध करके प्राण त्याग कर दिए, तो ये वो उसकी संलेखना नहीं हुई। ख्याल आता है ना, तो ऐसे शरीर का त्यक्त के किसी भी भेद में अंतर्भाव नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार से मृत शरीर को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता। फिर शंका, जो मंगल शास्त्र का धारक अर्थात ज्ञाता है, जिसने महाव्रत को धारण किया है, चाहे उस साधु ने समाधि से शरीर छोड़ा हो अथवा नहीं छोड़ा हो, परंतु उसके शरीर को अमंगलपना कैसे प्राप्त हो सकता है? ये बड़ा प्रश्न है। यदि कहा जावे कि साधुओं में अयोग्य कार्य करने वाले साधु का शरीर होने से वह अमंगल है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो शरीर पहले रत्नत्रय का आधार होने से मंगलपने को प्राप्त हो चुका है, प्रश्न क्या कहते, साधु थे ना वे, तो पहले वो उनका शरीर को मंगल कह रहे थे, उसमें पीछे से भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा मंगलत्व के स्वीकार कर लेने में कोई विरोध नहीं आता, तो बाद में भी वो पूर्व का जो शरीर था साधुपना का, तो वहाँ उसका भी उपचार करो। ये शंकाकार की शंका है, लंबी चौड़ी। इसलिए मंगलपने की अपेक्षा संयम के विनाश के भय से, श्वासोश्वास के निरोध से छोड़े हुए साधु के शरीर का त्यक्त के तीन भेदों में से किसी एक भेद में समावेश होना चाहिए। इस शरीर का चावित में तो अंतर्भाव हो नहीं सकता है, क्योंकि यदि इसका चावित में अंतर्भाव किया जावे तो आहार के निरोध से छूटे हुए त्यक्त शरीर का भी चावित में ही अंतर्भाव करना पड़ेगा। भक्त प्रत्याख्यान में क्रम क्रम से आहार का भी त्याग किया था, तो कोई कहते जैसे श्वासोश्वास का निरोध किया तो आहार का भी निरोध कर करके क्रम से किया, तो उसको भी उसमें चावित में ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऐसे शरीर को किस भेद में ग्रहण करना चाहिए, ये लंबा चौड़ा भी प्रश्न हो गया, उसका उत्तर देखते हैं। समाधान, मरण की आशा से या जीवन की आशा से, क्या कहते हैं वहां? क्या मरने की आशा है ना, चलो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, या जीवन की आशा से, नहीं मैं जीऊं तो अच्छा है? तो मरण की आशा से या जीवन की आशा से, अथवा जीवन और मरण इन दोनों की आशा के बिना ही कदली घास से छूटे हुए शरीर को चावित कहते हैं। यानी भले वहां आशा हो नहीं हो, दोनों की भी हो या दोनों की भी नहीं हो, फिर भी कदली घास से जब जब शरीर छूटता है तब उसको हम चावित कहेंगे। जीवन की आशा से, मरण की आशा से, अथवा जीवन और मरण इन दोनों की आशा के बिना ही कदली घास व समाधि मरण से रहित होकर छूटे हुए शरीर को च्युत कहते हैं। वो तो हमने देखा था, वो तो आयु पूरी हुई, वहां जीवन की आशा है नहीं है, उसका कोई सवाल नहीं है। आत्मस्वरूप की प्राप्ति के निमित्त जिसने बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे साधु के जीवन और मरण की आशा के बिना ही, क्योंकि उनको मरने की आशा नहीं होती है ना जीने की आशा होती है। साधु का स्वरूप ही कैसा है ना? मैं बहुत साल जीऊं या अभी मरण आ जावे, ये दोनों उसके नहीं है। वो मेरी भावना में आता है ना, लाखों जी, हाँ क्या है, हाँ लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये तो साधारण गृहस्थ भी ऐसी भावना करता है। तो मुनिराज मुझे मरण प्राप्त हो ऐसी भावना तो नहीं करेंगे, तो क्या कहते हैं? ऐसा जो साधु है वे जीवन और मरण की आशा के बिना ही कदली घास से अथवा इतर कारणों से छूटे हुए शरीर को त्यक्त शरीर कहते हैं। यानी वहां जो भोजन का आहार का वगैरह त्याग किया है वो कि मरण के अभिप्राय से नहीं किया है, उसका विशेषण। पूर्व में बतलाए गए च्युत चावित और त्यक्त के स्वरूप पर ध्यान देने से यह भली प्रकार विदित हो जाता है, विदित होते हैं यानी समझ में आता है कि संयम विनाश के भय से श्वासोश्वास का निरोध करके छूटे हुए साधु के शरीर का चावित में ही अंतर्भाव होता है, क्योंकि चावित मरण में कदली घात की प्रधानता है और श्वासोश्वास का स्वयं निरोध करके मरना कदली घात मरण है, वो आत्मघात है ना, उसमें समाधि का सद्भाव नहीं रह सकता, ये समाधि मरण नहीं कहला सकता। इसलिए ऐसे मरण का त्यक्त के किसी भी भेद में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। यद्यपि किसी त्यक्त मरण में कदली घात भी निमित्त पड़ता है, परंतु वहां पर कदली घात से परकृत उपसर्गादि निमित्तों का ही ग्रहण किया गया है। यानी कोई भयंकर उपसर्ग आ जावे तो वहां भी त्यक्त हो सकते ना, मुनि ने संलेखन धारण किए, अभी मुझे आजीवन त्याग है सब आहार पानी वगैरह का, ऐसा हो सकता है उस समय वो त्याग कर देवे, क्योंकि उसमें तो कोई छूटने के ऐसे कोई चांसेस नहीं दिखते हैं, तो ऐसे मुनि वहां समाधि मरण ले लेते हैं, तो वो उनका त्यक्त शरीर कहेंगे, त्यक्त शरीर। अभ्यासी, जानने वाला जीव लिया यहाँ, और यहाँ साधु की बात कर रहे हैं तो ये तो मुख्यतः मुनि की बात कर रहे हैं, सम्य दृष्टि। देखो कदली घात में परकृत उपसर्गादि निमित्तों का ही ग्रहण किया गया है, स्वकृत यानी स्वयं जो श्वासोश्वास का निरोध करते हैं, श्वासोश्वास निरोध आदि आत्मघात के साधन विवक्षित नहीं है, यानी आत्महत्या जो है वो सब वो कदली घात में चली जाएगी, स्वयं स्वयं का घात कर लिया ना। जो जीव भविष्य काल में मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा अथवा मंगल पर्याय से परिणत होगा उसे भव्य, भव्य कहो या पहले हमने भावी, भव्य या भावी कहा था। ये ज्ञायक शरीर के सभी भेद हो चुके, अब ये जो भविष्य काल में जो मंगल शास्त्र का जानने वाला होगा उसकी बात चल रही है, उसको भव्य नो आगम द्रव्य मंगल निक्षेप कहते हैं। हमने मूल तीन भेद देखे थे, आगम द्रव्य मंगल और नो आगम द्रव्य मंगल, पहला मूल भेद करने के बाद नो आगम द्रव्य मंगल के तीन भेद किए थे, ज्ञायक शरीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्त। फिर वो ज्ञायक शरीर में से लंबे चौड़े हमने सभी भेद देखे थे। ज्ञायक शरीर में भूत वर्तमान भावी लेखा था और उसमें जो भवि भूत थे ना, भूत शरीर वाले, तो भूत में कैसा छोड़ा है, च्युत चावित और त्यक्त देखे, और फिर त्यक्त यानी स्वयं छोड़ा हुआ संलेखना से, तो उसमें प्रायोपगमन, इंगिनिमरण और भक्त प्रत्याख्यान देखा। और भक्त प्रत्याख्यान भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसे अलग अलग थे। तो ये तो सभी ज्ञायक शरीर वाले भेद हो गए। अब ये भावी या भव्य वाला जो है, तीन भेद देखे थे ना नौ आगम के, ज्ञायक शरीर नौ आगम, भव्य नौ आगम और वो तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त यानी उसके अलावा अन्य कोई, दोनों को छोड़कर अन्य ही, उसको कहते तद व्यतिरिक्त यानी उसके अलावा। देखो ये विशेष अर्थ पढ़ेंगे हम, चार लाइन फिर कल ले लेंगे इसको। ज्ञायक शरीर के तीन भेद किए हैं, उसका एक भेद भावी भी है, परंतु उससे इस भावी को भिन्न समझना चाहिए। वो ज्ञायक शरीर में एक भूत भावी और वर्तमान देखा था, वो भावी और ये भावी अलग है, क्योंकि ज्ञायक शरीर के भावी विकल्प में ज्ञाता के आगे होने वाले शरीर को ग्रहण किया है और यहाँ पर भविष्य में होने वाला तद विषयक शास्त्र का ज्ञाता ग्रहण किया है। क्या कहना चाहते हैं, ज्ञायक शरीर में जो वर्तमान में जानने वाला है उस जीव का भविष्य शरीर लिया, और यहाँ भावी वाला जो भावी नो आगम जो है वो अभी वो जान नहीं रहा है, वो जीव आगे जाकर जानेगा, वो आगे जाकर ज्ञाता होने वाला है, जीव अभी ज्ञाता नहीं है, वही जीव आगे चलकर वो जानने वाला होने वाला है, उसके शरीर को यहाँ भावी वाला लिया। इसको भी हाँ दोहराते विशेषार्थ को फिर कल ले लेंगे इसको। ज्ञायक शरीर के तीन भेद किए हैं, उसका एक भेद भावी भी है, परंतु उससे इस भावी को भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञायक शरीर के भावी विकल्प, विकल्प ने भेद, भेद में ज्ञाता के आगे होने वाले शरीर को ग्रहण किया था, यानी वहां तो वो जीव वर्तमान में जान रहा है और उसका भविष्य का शरीर लिया था। अब ये भव्य वाला या जो कुछ भावी वाला जो है उसमें यहाँ पर भविष्य में होने वाला तद विषयक शास्त्र का ज्ञाता ग्रहण करना चाहिए, यानी वो जीव अभी नहीं जान रहा है, वो जीव भविष्य में जाकर जानेगा, ऐसा जीव यहाँ लिया है। ये पूरा ही टेबल फिर कल रिपीट करेंगे, क्योंकि वो शब्द नए हैं और बहुत बड़े बड़े हैं ना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नवो सदा देत होलो। प्रेरणा में